ईशिका वसुधा के साथ उनके रूम में थी। अभिमन्यु मीटिंग के चलते बाहर गया हुआ था। अभिमन्यु के जाने के बाद ईशिका और वसुधा बात कर रहे थे। बातों बातों में वसुधा ने एक राज की बात बताने को कहा। ईशिका को लगा कि वसुधा को इस बारे में याद आ गया है कि उसकी और अभिमन्यु की शादी कैसे हुई थी। इससे पहले कि वसुधा फिर से भूल जाती, ईशिका ने जल्दी से पूछा, क्या याद आया है दादी आपको? ईशिका की आंखों में चमक थी, मानो अगले ही पल वसुधा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हो। वसुधा तिरछा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें उस लड़की की वीकनेस बताऊंगी। जब कभी भी वो तुम्हें परेशान करेगा तो तुम उसे उसके खिलाफ यूज कर सकती हो। वसुधा की बात सुनकर ईशिका का चेहरा उतर गया था। वो ये नहीं जानना चाहती थी, तो उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, जबकि वसुधा उसे सब कुछ बताना चाहती थी। उसके हिसाब से अगर ईशिका अभिमन्यु के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेगी तो उनके बीच की दूरियां कम होगी। वसुधा ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, उसके बड़े शरीर और लंबी हाइट पर मत जाना, वो जितना घमंडी बनता है उससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें पता है उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। उनकी बात सुनकर ईशिका एक पल के लिए चौंक गई। वो अपने मन में बोली, मैंने आज तक किसी को बिल्लियों से डरते हुए नहीं देखा। हाँ, बचपन में एक लड़के को जरूर जानती थी जो बिल्लियों से बहुत डरता था। अभिमन्यु जैसे लंबे चौड़े आदमी को बिल्लियों से डर लगता है, ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। ईशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक ही उसके दिमाग में उस छोटे बच्चे की यादें ताज़ा हो गईं, जो दिखने में काफ़ी छोटा सा और क्यूट लगता था। ईशिका का ध्यान तब टूटा जब अचानक वसुधा ने उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, अच्छा बताओ बहू, तुम्हें कौन सा पेट एनिमल ज्यादा पसंद है, कुत्ते या बिल्लियां? मुझे डॉग्स अच्छे लगते हैं दादी, ईशिका ने मुस्कुराकर कहा। फिर अपने मन में बोली, न जाने क्यों आज उस लड़के की याद अचानक से मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई। पहले मुझे कैट्स अच्छी लगती थी और मैं हमेशा आवारा बिल्लियों के साथ खेलती थी। उस लड़के के आने के बाद मैंने भी बिल्लियों के साथ खेलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर लगता था। वसुधा आगे कुछ बोलती उससे पहले ईशिका ने कहा, अच्छा दादी, आप ज़्यादा बातें मत कीजिए, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है तो मैं भी सो जाती हूँ, वसुधा ने कहा और चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह लेट गई। कहने को वो उम्र में बड़ी थी, लेकिन ईशिका की सारी बातें मानती थी। उनके सोने के बाद ईशिका भी सो चुकी थी। आखिर अगले दिन उसे अभिमन्यु के साथ ऑफिस जो जाना था। ईशिका ने वसुधा के सवाल को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अगले दिन उसे समझ आ गया था। अगले दिन वो राजवंश एम्पायर में अभिमन्यु के फ्लोर पर थी। वहां अभिमन्यु, ईशिका और पृथ्वी हैरानी से खड़े थे। ईशिका के इर्द गिर्द एक सफेद फर वाला छोटा पिल्ला भौंकता हुआ उछल रहा था। उस पपी को लेकर पृथ्वी ही आया था, इस वजह से ईशिका और अभिमन्यु उसकी तरफ घूर कर देख रहे थे। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और कंधे उचकाकर कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, दादी का ऑर्डर था, उन्होंने कहा है कि मिस सिंघानिया का काम राजवंश एम्पायर में इस कुत्ते की देखभाल करना होगा। सीरियसली, हमारे इतने बड़े एम्पायर में एक कुत्ते को क्यों रखा जाएगा? ऊपर से उसकी केयर करने के लिए केयरटेकर तक हायर की जा रही है, अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला। पृथ्वी ने जवाब में कहा, हाँ, अजीब तो मुझे भी लगा था और बहुत फनी भी। मिस सिंघानिया को एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी सिर्फ एक कुत्ते को खिलाने के लिए। सुना था कि इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, पर ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश है। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और पृथ्वी से बोला, दादी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो, मैंने मिस सिंघानिया के लिए पहले से ही काम सोच रखा है। ऐसा करो, तुम उसे न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिविजन के टीम वन में ज्वाइन करा दो। वैसे तो न्यू एनर्जी रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राजवंश एम्पायर का मेन बिजनेस नहीं था, लेकिन आजकल ये काफी ट्रेंड कर रहा था। फ्यूचर में इसके डेवलपमेंट के बहुत स्कोप थे। यही सोचकर राजवंश एम्पायर ने इस फील्ड में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और ईशिका को अपने साथ आने को कहा। ईशिका ने उस क्यूट बपी को अपनी गोद में उठा लिया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अभिमन्यु ने उसे आते ही इतने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में काम दिया है। ईशिका उस पपी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोली, अच्छा, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? बोलते हुए उसने पृथ्वी की तरफ देखा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये आपका काम है तो आप ही सोच लीजिए, पृथ्वी ने थोड़ा इरिटेट होकर जवाब दिया। मैंने सोच लिया, ईशिका जल्दी से बोली। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हम इसका नाम बिल्लू रखते हैं। बिल्लू? लेकिन एक कुत्ते का नाम कब से बिल्लू होने लग गया? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें इसका नाम बिल्लू रखने से कोई प्रॉब्लम है? ईशिका ने अभिमन्यु को परेशान करते हुए पूछा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तुम इसका नाम बिल्लू रखो या फिर भौं भौं, बस काम पर ध्यान देना। उसके बाद ईशिका पृथ्वी के साथ वहां से नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिविजन की तरफ जाने लगी, जो कि उनके 20th फ्लोर पर था। पृथ्वी ईशिका के साथ लिफ्ट में था। वहां पहुंचने से पहले पृथ्वी ने इशिका से कहा, मिस सिंघानिया, वैसे तो इस डिपार्टमेंट के अंदर सभी पीएचडी किए हुए या फिर अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, लेकिन मिस्टर राजवंश ने आपको इस टीम में शामिल किया है क्योंकि दादी आपसे बहुत प्यार करती है। ये उन्होंने पहले ही सोच रखा था, फ्यूचर में ये आपके काम आएगा। देखा जाए तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है, फिर भी वहाँ सीखने की कोशिश कीजिएगा। इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चुप रहने पर पृथ्वी वापस बोला, एक्चुअली वो सर चाहते हैं कि आप दोनों की शादी पब्लिक ना हो, अगर लोगों का पता चला तो फ्यूचर में तलाक लेने में दिक्कत आ सकती है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन पब्लिक ना हो, ताकि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इशिका ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर पृथ्वी को गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोला, ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? ये अपने आप को राजवंश एम्पायर के मालिक अभिमन्यु राजवंश से कंपेयर कर रही है। उनके सामने इसकी कोई औकात नहीं है, फिर भी बातें इतनी बड़ी बड़ी रहती है इसकी। पृथ्वी इशिका को डांटना चाहता था, लेकिन तब तक वो अपने फ्लोर तक पहुंच चुके थे। न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन को दो भागों में बांटा गया था। एक हिस्से में रिसर्च का काम होता था तो दूसरा वहां काम करने वाले लोगों के कंफर्ट के हिसाब से बनाया हुआ हिस्सा था, जहां फूड एरिया, जिम एरिया, रेस्ट रूम और रिलैक्सिंग एरिया बना हुआ था। इशिका पृथ्वी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसके कानों में वहां काम करने वाले लोगों की आवाज पड़ी। उनमें से एक लड़का बोला, मैंने सुना है आज हमारी टीम में एक नई मेंबर आ रही है जो काफी यंग और ब्यूटीफुल है, अब तो काम करने में और मजा आने वाला है। हाँ, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा तो काम करने में भी मन लगेगा, मैं इन बोरिंग चेहरों को देखकर थक गया हूँ। काम करने वाली लड़कियाँ भी काफी अजीब सी हैं, काम के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। उसकी बात पर सहमति जताते हुए दूसरा लड़का मुंह बनाकर बोला। उनसे अलग तीसरा लड़का बोला, क्या बकवास कर रहे हो, वो लड़की अभी अभी ग्रेजुएट हुई है, यहाँ इस टीम में डॉक्टर मर्चेंट को शामिल करने की बात की जा रही है, वो यहाँ पर क्या एक शोपीस की तरह खड़ी रहेगी, यहाँ इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, खूबसूरत लोगों की नहीं। उनकी बातों से साफ था कि उन्हें इशिका के आने के बारे में पहले से पता था। उनकी बातें सुनकर इशिका को गुस्सा आने लगा। वो आगे कुछ कहता उससे पहले एक आदमी की सख्त आवाज सुनाई दी, क्या तुम लोगों को यहाँ गॉसिप करने के पैसे मिलते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो, वरना सबको यहाँ से निकाल दूंगा।
उसको देखते ही सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए। वो टीम वन का हेड रोहन था, उम्र लगभग 30 के आसपास, 5 फुट 11 इंच हाइट और चेहरे से ही गुस्से वाला। रोहन ने पृथ्वी और इशिका की तरफ देखा और पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस्टर चौहान, आप मेरी टीम में एक अनएक्सपीरियंस्ड कॉलेज स्टूडेंट को लाकर रख रहे हैं, इसका कारण जान सकता हूं मैं? बिग बॉस का ऑर्डर है, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु का नाम सुनते ही रोहन चुप हो गया। रोहन तो क्या, पूरे राजवंश एम्पायर में इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अभिमन्यु के फैसले पर सवाल उठा सके। रोहन ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और बोला, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है या किसके कहने पर तुमने यहाँ ज्वाइन किया है, तुम्हें मेरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, आगे से यहाँ पर कुत्ते को लेकर नहीं आना है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद रोहन ने उसे अपने ऑफिस की तरफ इशारा किया और उसे वहां जाने को कहा। उसके जाते ही रोहन ने पृथ्वी से कहा, जाकर कह दीजिएगा मेरे प्यारे कजिन को कि ये आखिरी बार है, उसकी इस कंपनी में इतनी ही चलती है, तो उसे बोलो ना कि डॉक्टर मर्चेंट को लेकर आए, क्या ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को यहाँ पर भेज रहा है? रोहन का पूरा नाम रोहन राजवंश था, वो भी राजवंश फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसने ये मुकाम अपने दम पर हासिल किया था। इसका एटीट्यूड उसके चेहरे पर नजर भी आता था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अभिमन्यु ने इशिका को इतने बड़े डिपार्टमेंट में सीधे जॉब दे दी, जबकि उस जगह को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पृथ्वी और रोहन फिर वहां से अपने अपने काम को निकल गए। इशिका अपने वर्कप्लेस पर थी। आज का दिन उसका काफी अच्छा बीत रहा था क्योंकि उसे कुछ खास करने को नहीं दिया गया था। वो पूरे दिन बिल्लू के साथ थी। जब सब लंच के वक्त इधर उधर हो गए थे, तब इशिका ने अपने मन में कहा, मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा, अल्जाइमर की दवाई बनेगी तभी दादी पूरी तरह ठीक होगी और मुझे बता पाएगी कि मेरी और अभिमन्यु की शादी कैसे हुई थी। आई एम सो सॉरी अभिमन्यु, तुमने मेरे बारे में बहुत सोचकर मुझे यहाँ काम दिया है, लेकिन फिलहाल मेरा काम कुछ और ही है। इशिका ने इधर उधर देखा और चुपके से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसे डेटा हासिल करने के लिए डेटा लाइब्रेरी के पास जाना था, जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल होती थी। इशिका को वहां जॉब देने से पहले अभिमन्यु और पृथ्वी को इसी बात का डर था कि कहीं उनका कोई प्राइवेट डेटा बाहर ना चले जाए। अगर आज इशिका पकड़ी गई तो पक्का अभिमन्यु और इसके रिलेशन में बड़ी गड़बड़ हो सकती है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।